ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير. Don't be sad, لا تحزن. اس کا ڈے نمبر 19. ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس میں ہم اپنے لیے رہنمائی لیں گے, اور آج کی ہماری آیت بہت ہی خوبصورت ہے ہر روز کی آیت کی طرح. سورۃ یوسف آیت 84. وتولى عنهم وقال يا اسف على يوسف يا اسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. اور اس نے ان سے منہ پھیرا اور کہا ہائے یوسف, اور غم سے اس کی آنکھیں سفید پڑ گئیں اور وہ گھٹا گھٹا رہنے لگا. جنہوں نے بھی قصہ یوسف پڑھا ہے یا سورۃ یوسف کو کسی بھی اینگل میں سنا اور آج تک اس سے فائدہ اٹھایا ہے, وہ جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی جدائی کے بعد جب دوسرے بیٹے کا بھی غم پڑا تو اس وقت یوسف علیہ السلام کی یاد آ گئی. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جب اگلا غم آتا ہے تو پچھلا غم بھی یاد ہو جاتا ہے. اسی لیے عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ میت والے گھر میں لوگ ظاہر تو اس کو رو رہے ہوتے ہیں کہ جو وہاں پہ موجود ہے جسد خاکی کی صورت میں, لیکن یاد پچھلے آتے ہیں. تو یہاں جو بات ہے من الحزن فہو کظیم, اس کی آنکھیں سفید پڑ گئیں اور وہ گھٹا گھٹا رہنے لگا. آپ اور میں اپنی زندگی کا کوئی ایسا معاملہ یاد کریں جہاں خاص طور پہ اولاد کا غم پڑا ہو. حقیقت یہ کہ یہ زندگی مصائب کا گھر ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہمیں مختلف قسم کے مصائب کا پیغام تو پہلے ہی دے دیا, مصائب خمسہ کی صورت میں. ہم اس دنیا میں کسی ایک تکلیف سے, ایک غم سے جان چھڑا نہیں پاتے تو دوسری ہمارے سامنے ہوتی ہے. اور اسی طرح جیسے ایک ڈرائیور مختلف قسم کی گاڑیوں کو اپنے راستے سے ہٹتا بچتا بجاتا آگے چلتا جاتا ہے, اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنی منزل پہ اترنے لگتا ہے, بالکل زندگی کے اس سفر میں بھی آپ کے میرے ساتھ ایسا ہی ہوگا. جتنی مرضی کوشش کیجئے, جتنا مرضی بچنے کی کوشش ہو, جتنی مرضی اچھی غذا لیجئے, بیماریاں تو آئیں گی. ہر دن کمزوریوں کو بڑھائے گا. اولادوں کو شروع سے یہی دعائیں کیوں نہ دی ہوں کہ اللہ تمہیں تتی ہوا نہ لگائے, یعنی اللہ تمہیں گرم ہوا نہ لگائے. اس کے باوجود بھی جو غم ملنے ہیں اولادوں کو اور اولادوں کی صورت میں آپ کو, وہ مل کے رہیں گے. اس کو ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے, اس سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے, صرف قبول کرنا ہے. اور یہی قبولیت غم کو دور کرتی ہے. یعقوب علیہ السلام کے اس عمل اور ان کی اس کیفیت کو محسوس کرتے وقت آپ نے, میں نے بھی ایک تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ, وہ انبیاء کرام تھے, ان کے غم بھی بڑے تھے, ان کے حوصلے بھی بڑے تھے, کیونکہ انسان پر ایمان کے مطابق آزمائش آتی ہے. ان کو ایک نہیں بلکہ تین بیٹوں کا غم سہنا پڑا. تو اللہ ہمیں ان آزمائشوں سے بچانا, اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ ہمارے سب بہن بھائیوں کو ایسی ساری تکلیفوں سے بچا کے رکھنا. لیکن اگر خدا نخواستہ کسی پہ پڑ چکا ہے ایسا غم, تو پھر اس کے لیے صرف یہی ہے فہو کظیم. غم کے گھونٹ بھریے, رضیت باللہ ربم وبالاسلام دینن کہیے, اور اللہ کی رضا کو قبول کیجئے. بس آپ کی میری اوقات ہی اتنی ہے, اس سے زیادہ ہم کچھ کر سکتے نہیں. شور مچا لیں, بات کر لیں, کسی کو سنا لیں, اس سے کہ کیا کہوں کیا بتاؤں, نہ کہے بات بنے نہ, اس سے فائدہ کچھ نہیں ہوگا. عموماً ہم ایسی باتوں کے قصے بنا کر ایسے پیش کرتے ہیں. اپنے لیے ایک اصول بنا لیجئے, کبھی بھی خود کو مظلوم بنا کر نہ پیش کریں. بہت ہی تکلیف دہ ہو آپ کے لیے کہ کوئی میرے بارے میں آہ بھرے. جو غم اللہ دیتا ہے اسی کے سامنے رکھیے, انا معشکو بسی و حسنی اللہ, ان شاء اللہ تعالیٰ وہی آپ کے غموں کو دور کرے گا. اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ ایک وقت آئے گا کہ اتنے مضبوط الاعصاب اور آپ کے اتنے اسٹرانگ مسلس ہو چکے ہوں گے کہ آپ اللہ کی اس رضا اور اس فیصلے کو دل کی خوشی سے قبول کریں گے. تو اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے بھی اس پہ راضی ہو. کچھ ٹاپک جو ہم نے اس سے پیچھے کیے تھے ان کو دیکھ لیتے ہیں. پچھلی نشست کے جو ٹاپک تھے उनमें सबसे पहले जो हमने किया वो था अच्छे कामों से खुशी मिलती है, तो अच्छे काम करने की मजीद कोशिश करनी है। यकीनन हम सब इसी रास्ते पे लगे होंगे। अपने कल से अपने आज को बेहतर बनाइए। तलब तड़प के साथ कैफियत को महसूस करते वक्त अल्लाह ताला से खैर के काम मांगिए, और जितना ज्यादा आप और मैं तलब करेंगे अल्लाह ताला हमें उतनी ही काम देगा। फिर उसके बाद देखिए कि दूसरा टॉपिक जो था वो था इल्म रा बर दिल जनी यारे बूत, यानी इल्म को सिर्फ एक टाइटल नहीं बनाना, जिस्म पे नहीं लगाना, दिल पे लगाना है। क्योंकि इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, जितनी खशियत बढ़ती है समझ लीजिए कि उतना इल्म बढ़ता जा रहा है। फिर इसी तरह मालूमात भी होनी चाहिए और गौरव फिक्र भी, सिर्फ मालूमात का एक मजमुआ ना बन जाए इल्म के नाम पर भी, बल्कि गौरव फिक्र की आदत भी हो। फिर इसी तरह अपना एहतसाब किया कीजिए। क्यों? इसलिए कि जो अपना खुद कर लेता है उसका हिसाब आसान होगा। दिफा का सामान कर ले, इसलिए किसी लम्हे भी कुछ हो सकता है। आप और मैं आने वाली मुसीबत को रोक तो नहीं सकते, लेकिन सिक्योरिटी मेजर्स तो ले ही सकते हैं। फिर लोगों को अपना बनाइए, मुल्क दर मुल्क घूमिए और कुदरत की निशानियां देखिए, यानी सैरो सियाहत भी हो तो बामकसद हो। और फिर एक टॉपिक था कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहरगही, सुबह में यानी सहरियों में, कि जिसको आप मिड नाइट कह सकते हैं, रात का आखिरी पहर कह सकते हैं, उसमें जागे बिना कुछ हाथ नहीं आता। तो हमने नियत की है कि इंशाल्लाह कुछ हिस्सा रात का हमने भी अपने रब के सामने खड़ा होना है। कल रात किसी की बात सुन रही थी तो वो बता रहे थे, एक अरब स्कॉलर जिनको उर्दू भी आती थी, एक शख्स उनके पास आया तो एक सवाल किया कि मैंने अपनी जिंदगी बड़ी गफलत में गुजारी, जब होश आया अकल समझ आई तो किसी के पास पढ़ने के लिए बैठा, और अभी तक सिर्फ कुल हो अल्लाह हु अहद पढ़ सका, कुरान में से और कुछ नहीं आता। अब रात का पिछला पहर होता है तो उठ के खड़ा हो जाता हूँ, 2-2.5 घंटे तक अल्लाह के आगे नफलों में सिर्फ कुल हो अल्लाह ही पढ़ता हूँ, तो क्या मेरी नमाज कबूल हो जाएगी? वो जो बात कर रहे थे उन्होंने कहा कि उसका सवाल सुन के मुझे फिक्र तो सारी भूल गई कि नमाज होती है कि नहीं। मेरा तो सर शर्म से झुक गया कि अल्लाह, जिसको सिर्फ कुल हो अल्लाह आई, वो रात के 2-2.5 घंटे तेरे सामने खड़ा हो गया, उनका क्या बनेगा जिनको पूरा पूरा कुरान आता है, जिनके सीनों में इल्म है। और मैं इसी पे सोचता रहा, ये है असल में इल्म। डिग्रियों का नाम इल्म नहीं है, आप जितनी हैं आप उससे और ज्यादा ले लीजिए। अगर आपके अंदर ये खशियत नहीं, अपना मुहासबा नहीं, अपना एहतसाब नहीं, तो बात नहीं बनेगी। अल्लाह ताला हमें भी रातों के अपने सामने रोने वाला बना दे। फिर इसके बाद आपकी कीमत जन्नत है, आपको इतने सस्ते थोड़ी हैं जो आप अपने आप को जाया कर दें। और इसी तरह हकीकी मोहब्बत, मालिक हकीकत की, जब ये मोहब्बत दिल में आती है तो उसके बाद जिंदगी खूबसूरत होने लगती है। इंसान इसी जिंदगी को पाने के लिए अगर तड़प सके तो तड़पे, क्योंकि दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। जितना ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत आपकी मेरी जिंदगी में आती जाएगी, मुश्किलें आसान होती जाएंगी। याद रखिए कि अल्लाह से मोहब्बत के बाद ये नहीं होता कि मुसीबतें आती नहीं है। बिलाल रजी अल्लाह अन्हो को जो तकलीफें थी महसूस नहीं होती थी, बल्कि और तकलीफें आती हैं। अल्लाह ताला और आजमाता है, आप अपने प्यारों ही के लिए तो मेहनत करते हैं। आप कहते नहीं, आपके लिए बना के खुशी होगी, आप क्यों परेशान है, इट्स माई प्लेयर। तो जब आप अल्लाह के रस्ते में आजमाए जाते हैं ना, तो वहां भी इंसान का दिल खुश होता है। फिर तकलीफें भी उसका दिया हुआ एक तोहफा लगती हैं, उसकी तरफ से आया हुआ एक इनाम लगती हैं। आज जिस टॉपिक से शुरू करेंगे वो है शरीयत सादा और आसान है। ये भी बात बहुत जरूरी है समझनी, क्योंकि बाज लोग दीन के नाम पर ऐसा मुश्किल दीन पेश करते हैं लोगों को कि लोग पहले ही दूर थे, अब करीब होने की कोशिश ही नहीं करते। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हम दीन को उसकी असल शक्ल में देखें, दूसरों से शेयर करें। आइए इसमें से कुछ फायदा उठाते हैं। शरीयत सादा है और आसान है। मुसलमान के लिए ये बात इत्मीनान बख्श है कि शरीयत आसानी और रवादारी पर मबनी है। रवादारी क्या होती है? बहुत एक दूसरे का ख्याल रखने वाली। जैसे आप पहले दौर में अक्सर एक लफ्ज़ बोलते थे, फलां बड़ा रवादार है, वो बड़े खानदानी लोग हैं, मुराद यह कि आपका घर मेरे लिए खुला, मेरा घर आपके लिए खुला। फरमाया सूरह तौहा में, तौहा, हमने तुम्हारे ऊपर कुरान इसलिए नहीं उतारा कि तुम मशक्कत में पड़ जाओ। लितशका, तो दीन इस्लाम या कुरान पढ़कर कोई ये ना सोचे कि उसकी जिंदगी मुश्किलों में पड़ेगी, बल्कि जिंदगी और हसीन होगी। फिर इसी जगह एक दफा फरमाया, हम आसान रास्ते की तरफ तुम्हारी रहनुमाई कर देंगे। फसनु यस्सिरुहु लिल्युसरा, फिर इसी तरह अल्लाह ताला हर नफ्स को उसकी ताकत के बराबर ही मुकल्लफ बनाता है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, फिर इसी तरह अल्लाह ने हर आदमी को जितना दिया है इसी का मुकल्लफ भी बना दिया, यानी बोझ जरूरत से ज्यादा अल्लाह नहीं डालता। आप देखिए, कोई माँ अपने बच्चे को ये नहीं कहेगी कि 10 किलो घी का डब्बा लेके आओ, वो कहेगी तो 1 किलो का बैग उठा लो, अपने जूते उठा लो, अपनी किताबें उठा लो। तो जब एक माँ इतनी मेहरबान है तो माँ के दिल में मेहरबानी डालने वाला रब कितना मेहरबान होगा। तो कभी भी जिंदगी में कोई तकलीफ आए ना, तो ये ना कहा करें कि मेरी औकात से ज्यादा आ गई और मेरी बर्दाश्त से ज्यादा आ गई। अल्लाह ताला कहते हैं कि नहीं, हम उतना ही आजमाते हैं जितना तुम डालते हो। आज आप देखिए, छोटी छोटी कंपनीज, फर्नीचर बनाने वाली या कोई और घर की चीजों को जो हम अपने इस्तेमाल में रखते हैं, एक लिमिट रखते हैं। मशीन है तो उसमें इतने कपड़े डालिएगा, टेबल है तो इस पे इतने किलो वजन रख सकते हैं, इस कुर्सी को, इस सोफे को, इसको ऐसे यूज कीजिए। तो जब उनको इतनी समझ है तो क्या अल्लाह ताला किसी के साथ ऐसा रखे? अब आप कहेंगे फिर लोग हमसे मर क्यों जाते हैं, फिर लोग खुदकुशी क्यों करते हैं? तो इसकी वजह भी सुन लीजिए। अल्लाह ने डाला तो उतना ही था जितना वो बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उसको कबूल ना करके दिल दिमाग पर उसका बोझ बढ़ा दिया। ये जो टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन है ना, ये असल में यही चीज है। जैसे बच्चा इंजेक्शन लगवाते हुए जिस्म को कड़ा ले तो दर्द ज्यादा होता है। तुम्हारे दीन में इसने कोई तंगी नहीं रखी। अल्लाह ताला सूरह हज के बिल्कुल आखिर में कहते हैं कि उसने तुम्हारे दीन में किसी किस्म की कोई तंगी नहीं रखी, ला हरज हम। फिर इसी तरह पैगंबर इनसे अगलाल और बोझों को खत्म कर देते हैं जो इन पर थे। हमारे तो प्यारे नबी की ये शान सूरत अलआराफ 157 में आई है कि वयदा अनहुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम। तुम्हारे नबी की तो अपनी जिंदगी बड़ी आसानियों वाली थी, उन्होंने तो रस्म रिवाज के सारे बोझ और तौक, तासुब के और हसद के सब कुछ उतरवा के लोगों से फिकवा दिए। ये तो आज हमें शौक है दोबारा इन्हीं चीजों को अपने ऊपर बोझ लादने का और परेशानियों में रहने का। फिर इसी तरह फाइन नमाल उसरी युसरा, और इन नमाल उसरी युसरा, तंगी के साथ आसानी है, उसर के साथ युसर। और हम क्या दुआ मांगते हैं सूरत बकरा के बिल्कुल आखिर में, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना अख्ताना, ए रब अगर हम भूल जाएं या हमसे खता हो जाए तो हमारा मुआख़ज़ा ना करना। वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीन मिन क़ब्लिना, हमारे ऊपर वो बोझ ना डाल जो हमसे पहलों पर डाला। रब्बना, ए हमारे रब, और जिसके हमें ताकत ना हो इसका मुकल्लफ ना बनाना, हमें मुआफ़ कर देना। ए अल्लाह तेरी बख्शिश गुफरान का हमें बख्श दे, तेरी बख्शिश, वरहमना अंत मौलाना फंसुरना लल कौमिल काफिरीन, तो हम पे रहम फरमा, तू ही हमारा मौला है और काफिरों पर हमें फतह और नुसरत दे। इतनी आयतें इकट्ठी एक जगह सुनकर आपको कैसा लगता है? बड़ा अच्छी टिप दे रही हैं आपको। अगर किसी भी टॉपिक पे कभी बात करनी हो किसी से, दर्स की या किसी को समझाना हो, ये सारी आयतों के नंबर खोलिए, कुरान खोलकर एक एक आयत को हल्का हल्का वाजे करते जाए, एक घंटा पता भी नहीं चलेगा। कुरान की आयतों के साथ जो बात की जाती है वो आपकी मेरी बातों से बहुत ज्यादा वजनी बात होती है। हम सोच रहे हैं जितना हम खुद बोलेंगे उतना अच्छा लगेगा, लेकिन बात यह है कि एक आयत हमारी 10-15 बातों से ज्यादा भारी होती है। इसी से हमारी बात में वजन होता है, इसके साथ ताल्लुक अपना मजबूत करने की जरूरत है। फिर इसके बाद देखिए कि अल्लाह के नबी की अहादीस में भी यही पैगाम है। आपने फरमाया मेरी उम्मत के लिए खता, निसियान और जबरन जो काम कराया जाए वो माफ है। दीन आसानी का नाम है, दीन पर जो भी शिद्दत बरतना चाहेगा वो नाकाम होगा। और ये बात आप नोट कीजिए, आज भी कुछ लोग बड़ी शिद्दत बरतते हैं, कुछ चीजों में बरत लेंगे बाकियों में नहीं बरत सकते। कुछ अरसा तक उस मुश्किल दीन पे रहेंगे, कुछ अरसे के बाद छोड़ना पड़ता है। रिलैक्स्ड, ठंडे ठंडे रहिए, शरीयत की हद में रहिए, खाइए भी, पिए भी, पहनिए भी, डिसिप्लिन भी रहिए, जुबान का भी अच्छा इस्तेमाल, घर वालों से भी अच्छे, बाहर से भी अच्छे, दूर तक चलेंगे। एक जगह पढ़ा कि अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, और अगर आप लोगों को साथ लेके चलना चाहते हैं तो आपको धीरे धीरे चलना पड़ेगा। तो ये सारी बातें हमें ये दिखा रही हैं कि हमें कैसे अपने आप को बेहतर से बेहतर करना है और शरीयत पर रहने वालों के लिए आसानियां भी हैं और सादगी भी है। और इसी तरह से अल्लाह के नबी पैगाम दिया करते थे उन लोगों को जो खास तौर पर लोगों से तबलीग के लिए राब्ता रखते या जो अल्लाह के दीन के लिए निकलते, तो आप फरमाया करते थे सही रास्ता दिखाओ, तकरीब पैदा करो, तकरीबन कुर्ब दो, बिशारत दो, खुशखबरियां देख देख आता है बशिरू वला तुनफिरू, नफरत ना दिलाया करो लोगों को। नमाज को पढ़ाता और जरा सी लंबी नमाज पढ़ा देता तो आप कहते लोगों को फितनों में क्यों डालते हो नमाज। फिर आपने फरमाया मैं आसान और सादा दीन लेकर आया हूँ, तुम्हारे दीन में यूसर का सबसे ज्यादा ख्याल रखा गया। अब बाज़ लोग ये सोच सकते हैं इस बात से कि फिर नमाजें क्यों हैं, पांच हैं, इतनी ज्यादा हैं, रोजे क्यों हैं, जून में क्यों हैं। तो याद रखिए, ईमान वाले को पांच भी थोड़ी लगती हैं, वो तो 50 का उम्मीदवार था। और मोमिन को रोजे में इतना मजा आता है कि वो ये नहीं कहता 29 हों, वो ये नहीं कहता दिसंबर के रोजे हों, बल्कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु कहा करते थे रोजे हों तो गर्मियों में हों, सर्दी के रोजे का क्या मजा। नफिल रोजे जब रखने होते कसरत से तो रमजान की बात जहां भी रखते गर्मियों में रखते, क्यों? कहते कि इसमें मजा ज्यादा आता है। तो असल बात मोहब्बत है। अगर आपको अभी भी शरीयत मुश्किल लगती है तो दुआ भी कीजिए और इलाज भी कीजिए अपना कि अल्लाह मेरे लिए इस चीज को मानना और करना समझना आसान कर दे, क्योंकि जितना ज्यादा ईमान बढ़ता जाता है उतना अल्लाह की बात को मानना बड़ा आसान लगता है। चार बाल नहीं बर्दाश्त कर सकता इंसान दाढ़ी के अगर ईमान ना हो, 4 इंच का कपड़ा बर्दाश्त नहीं होता, और जब ईमान होता है तो इंसान कहता है अल्लाह ताला कोई और भी अगर तेरी तरफ से तोहफा उतरता है तो मैं उसको भी खुशी से कबूल करूंगा। एक हम असर शायर को एक हुकूमत में वजारत पेश की गई इस शर्त पर कि वो अपने पैगाम हक, अपने मिशन और तमन्नाओं से दस्तबरदार हो जाए। तो इसने अशार की जुबान में जवाब दिया और कहा अपनी दुनिया अपने पास ही रखो, मेरे दिल को आजाद छोड़ दो, तुम मुझे गरीबुल वतन तन्हा बे यारो मददगार समझते हो, हालांकि तुमसे बड़ी दौलत मेरे पास है। ये कौन सी दौलत थी? दिल के इत्मीनान, सुकून की दौलत, खुशी की दौलत। तो क्या पता चला कि बड़ी बड़ी जगह, बड़े बड़े महल, वजारतें और सदारतें ये खुशियां नहीं देती। तो हमने क्या सीखा कि शरीयत सादा और आसान है। आप देखिए कि आज के दौर में जो मुरव्वजा 3 मारूफ नाम हैं दीन के नाम पे, उसमें एक यहूद की शरीयत है, एक ईसाइयों की शरीयत है, इसी तरह एक मुस्लिम शरीयत है। यहूद की शरीयत बहुत मुश्किल थी, बस अगर कोई कत्ल करे तो उसके बदले में कत्ल ही किया जाता था वही शख्स। इसके बरक्स ईसाई यानी नसारा का जब दौर आता है तो उन्होंने कुछ तो खुद ही बहुत नरम कर दी, कुछ अल्लाह की तरफ से भी उनमें नरमी आई। मसला यह था कि कोई कत्ल करे तो बस मुआफ कर दो, कोई अदर ऑप्शन नहीं थी। इसके बरक्स मुसलमानों की शरीयत मुतवाजन है और आसान है, कत्ल के बदले कत्ल भी है, कसास भी है और माफी भी है, और पसंद माफी को किया गया। तो शरीयत आसान है ना आपकी मेरी। फिर आप देखिए कि मुसलमानों में मुख्तलिफ अंदाजे फिक्र के लोगों की राय है, यानी आज जिस इस्लाम के अंदर मैं और आप अपने आप को फील कर रहे हैं ना, आप देखिए कुछ लोग खुद को सूफीज कहते हैं ना, सूफीज ये तबका फिक्र के जो लोग हैं ये कहते हैं कि लोगों से कट जाओ, सिर्फ अल्लाह की रजा पाओ और उसको ज्यादा खुश रखो। ठीक है, सूफीज्म अपनी जगह कोई बुरा या गलत सोच का दीन नहीं था। आज कुछ लोगों ने कुछ इस किस्म के काम किए कि जिससे बड़े अच्छे अच्छे सूफीज को भी बदनाम कर दिया। इस पे डिटेल में जाने का भी वक्त नहीं है। असल में सूफी कहते हैं सूफ पहनने वाले, मोटा कपड़ा, ऊन का कपड़ा, जुब्बे, यानी बहुत दुनियादारियों में ना पड़ो। पहले दौर के जो सूफीज थे वो काबिले तकलीद थे, उन्होंने असल में वही हुबे दुनिया का लुबादा उतार कर कुन फिद दुनिया का अन्ना का गरीब नौबर सबील पे रखा और फराइज की सतह तक लोगों से जीते थे और बाकी वक्त अल्लाह ताला के साथ लगाते। आज इसमें भी कई मुख्तलिफ तबके आ गए जिसकी इस वक्त जरूरत नहीं बात करने की। इसी तरह एक और मुसलमानों की किस्म पैदा होगी, लिबरल तबका। वी आर लिबरल्स, ये क्या कहते हैं कि लोगों के हकूक खूब दो और मजहब को जिंदगी से निकाल दो, ये जाती मसला है, डोंट टॉक अबाउट रिलीजन, और दीन भी रखो दुनिया भी रखो, दीन बस इतना है कि हर साल ईद की नमाज पढ़ लिया करो, और बहुत नेक होना है तो हर जुमे को जुमे की नमाज पढ़ लिया करो, ये क्या दिन में 5 बार उठ उठ के नमाजें पढ़ते फिरो, इस तरह की मिसाल की बातें। एक तीसरा तबका है जिसको उलमा और दीनी तर्ज फिक्र का तबका आप कह सकते हैं, ये हकूकुल्लाह और हकूक इबाद को मुसावी अदा करने पर जोर देता है। इस तबके में भी बहुत सारे अफराद और तफरीत आ चुके हैं, لیکن اللہ والے جو حق والے ہیں وہ یہی کہتے ہیں۔ تو آپ کا میرا پھر گول کیا ہے؟ ہم لوگوں کو اللہ سے جوڑنے والے ہوں، حقوق اللہ بھی پورے کریں اور حقوق العباد کو بھی پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بارے میں ایک روایت بھی سن لیجئے، اللہ کے نبی کو یہ خبر ملی کہ فلاں بندہ مسجد میں لمبی نماز ادا کر رہا، آپ اس کے پاس آئے، اس کے کندھے کو پکڑا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے آسانی کو پسند اور تنگی کو ناپسند کیا ہے۔ اور تین دفعہ یہ بات ارشاد فرمائی، یعنی آپ کی عادت تھی کہ جو بات بڑی اہم ہوتی اس کو ایک سے زائد بار کہتے، جبکہ اس بندے نے تنگی کو اختیار کیا ہے اور آسانی کو ترک کر دیا۔ یہ سلسلہ صحیحہ کی روایت نمبر 60 ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ نفل پڑھنے ہیں تو گھر میں پڑھیے، آپ کی نفلی عبادات ہیں، کچھ ایسے کام ہیں جو آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو دوسروں میں اس کو بیٹھ کر کرنے سے بعض دفعہ انسان کے اندر ایک عجب بھی آنے لگتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی لوگوں پر تخفیف اور آسانی کو پسند کرتے تھے۔ یہ بہت اہم ہے، جتنا زیادہ آپ آگے سے آگے بڑھتے جائیں گے نا اپنی زندگی میں، آپ کو اس اصول کو اپنانا پڑے گا۔ سخت خو ٹیچرز کو کوئی پسند نہیں کرتا اور سخت گیر ایڈمنز کو بھی کوئی پسند نہیں کرتا، لیکن اس کا یہ بھی نہیں مطلب کہ آپ نرمی کے نام پر رولز کو توڑنے لگیں۔ اے زبان نرم ہو، اصول سخت ہو۔ یہی تو صحابہ کرام رحمہ بینہم اشد الکفار، تو بات نہیں چھوڑنی، بات حق کی، پتھر پہ لکیر ہوں آپ، لیکن اگر اس کے برعکس اگر کسی سے کوئی بات کرنی ہے تو دل جوئی کی بات کیجئے، لٹ مار سٹائل نہ ہو، آسانیاں دیا کرے، اگر گنجائش ہے آسانی کی تو وہ دیجئے، پھر اگلا خود ہی اس سے زیادہ بڑھ کر اپنے لیے لینا چاہے تو وہ اس کی خوشی ہے۔ پھر اسی طرح صحیح مسلم کی روایت تھی کہ آسانی کرو اور سختی مت کرو، آرام دو اور نفرت مت دلاؤ، اور معاف کرنے کے لیے تو اللہ نے دیکھیے خطا کو معاف کیا، نسیان کو معاف کر دیا، بھول چھک جس کو آپ کہہ سکتے ہیں فارگیٹنس، اور جبری کام کی بھی معافی ہے، کوئی مجبور کر کے کسی سے کوئی غلط کام کروا لے تو اللہ نے اس کو بھی معاف کیا۔ کیا پیار نہیں آ رہا اللہ پہ؟ اتنی محبت کا احساس ہوتا ہے، اور افسوس بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ دین کا ایسا ورژن لوگوں کو دکھا رہے ہیں آج کہ جس کے بعد لوگ واقعی ان سے تو کیا ہوں گے، دین سے بھی دور ہونے لگتے ہیں۔ اگلا ٹاپک دیکھتے ہیں، راحت کی بنیادیں، یعنی خوشی کی بھی کوئی بنیاد ہوتی ہے، ہم غم دور کرنے لگے ہیں تو جب غم دور ہوں گے تو خوشیاں آئیں گی۔ تو اس کے بارے میں ایک رسالے میں ایک عنوان تھا قلق سے بچاؤ، اس کے 20 اصول شائع ہوئے اور لکھنے والے تھے ڈاکٹر حسان شمسی پاشا۔ اس میں انہوں نے کہا کہ تقدیر لکھی جا چکی ہے، ہر چیز قضاء و قدر سے ہوتی ہے۔ سوچیے، بڑے سے بڑا غم آیا کبھی آپ کی زندگی میں، آپ کہیں گے کیا بتاؤ، ہل کے رہ گئی تھی، اس دن تو یہ لگا تھا سب ختم، لیکن الحمدللہ آج بھی زندہ۔ تو بڑے سے بڑا غم چلا جاتا ہے ایک وقت گزرنے کے بعد، اور اب کبھی وہ واپس بھی نہیں آئے گا۔ سوچ لیجئے، ساری دنیا بھی اکٹھی ہو کر اسے واپس نہیں لا سکتی، مستقبل عالم غیب میں ہے، ابھی نہیں آیا، نہ اس نے دستک دی، تو اس کے آنے سے پہلے مت بلاؤ۔ یعنی جو کل آئی نہیں، آپ میں اس کے غم میں کیوں ہولیں؟ کتنا دل سکون میں، آپ چھوٹے 10 سال کے بچے کے لیے فکر میں ہیں، پتہ نہیں یہ پڑھے گا نہیں، ڈاکٹر بنے گا کہ نہیں، پتہ نہیں اس کی شادی ہوگی، پھر پتہ نہیں شادی کے بعد اس کے بچے بھی ہوں گے کہ نہیں، اچھا بچے ہو گئے تو کہیں مر ہی نہ جائیں۔ آپ کو تو واقعی پھر کسی سائیکاٹرسٹ یا پھر کسی خاص روم میں جانا پڑے گا۔ کیوں اتنے غم کرتے ہیں؟ صحابیات اور صحابہ کرام کو ایک بڑا غم تھا کہ آج کیا کر سکتا ہوں، اللہ کے دین کو میری کتنی ضرورت ہے، ذاتی غم تو ان کو یاد بھی نہیں ہوتے تھے، اور آئے بھی تو وہ گزر جاتے ہیں کہ اچھا آئے تھے پتہ ہی نہیں چلا۔ زندگی میں ایسے بہت سارے معاملے آئیں گے، آپ دیکھیے گا، اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کسی کو اللہ کسی بڑی آزمائش میں ڈالے، لیکن بڑی سے بڑی آزمائش سے بندہ کیسے گزر جاتا ہے، ہوش ہی نہیں تھا، بعد میں یہ ہوا وہ ہوا۔ ہمارے اپنے ساتھیوں میں ایک سسٹر تھی، تو وہ اتنی مصروف تھی اللہ کے رستوں میں کہ ان کے ہسبینڈ تھوڑے بیمار تھے، لیکن ان کو ان کی شدت نہیں تھی پتا، اور نہ شوہر نے کبھی اعتراض کیا نہ کہا، ہلکا پھلکا معاملہ چل رہا تھا، اچانک ڈیتھ ہو گئی۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ تو پچھلے 3-4 ماہ سے بہت سٹرگل میں تھے۔ یہ کہتی ہے نہ اس اللہ کے بندے نے بتایا، اور نہ میں نے کوئی اتنی انیوژل بات دیکھی، اور میں تو مصروف ہی اتنی تھی کہ مجھے ہوش بھی نہیں کبھی آیا۔ اور خود کہتی ہیں کہ اگر میں فارغ ہوتی اور میں اپنے شوہر کی اس بیماری کا غم پال لیتی تو آج میں بھی بستر پہ ہوتی۔ تو مت غم کیجئے کرونا کا، مت غم کیجئے یہ اور وہ اور یہ جراثیم اور جنگیں، ہونے دیجئے، ٹائم نہیں ہے، بعد میں سوچیں گے۔ یہ کر کے دیکھیے बड़े से बड़ी खबर आके छप के पुरानी हो जाएगी, आपको पता ही नहीं होगा, आपको कोई एक हफ्ते बाद पता चलेगा, लोग ही कहेंगे अच्छा ये हुआ था, शुक्र है टल गया। भी क्या टल गया, वो ये, वो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सबका भला करे। मसरूफ हो जाइए, जहन मसरूफ होना, गम आते दूर होते हैं। हमारा जहन परेशान रहता है तो हाथों और जिस्म से जो काम भी करते हैं ना, उसमें फिर बहुत सारी कमी बेशी हो जाती है। फिर आप देखिए कि लोगों से एहसान और सलूक दिल को मसरत बख्शता है, सीना ठंडा करता है, इनके लिए बड़ी बरकत, सवाब और अजर राहत का सबब होता है। मोमिन का शेवा होता है कि वो जालिमाना तनकीद की परवाह ना करे, क्योंकि सबो शितम यानी गाली गलोच, इससे अल्लाह रब्बुल आलमीन भी नहीं बचा जो अकमलो कामिल है। मुराद है कि लोग अल्लाह को भी गाली देते हैं नऊज़ बिल्ला, और सही हदीस है कि बंदा मुझको गाली देता है और उसका गाली देना क्या कि वो जमाने को बुरा कहता है। इसी तरह आप देखिए कि अल्लाह ताला तो जलील है, जमील है, इसके नाम बड़े मुकद्दस हैं। एक शेर की जुबान में कहने वाले कहते हैं कि तुम गरम गरम आंसू क्यों बहाते हो, तुम्हारा दिल दहशत गर्दी से हो रहा है, मामला रब्बे जलील के हवाले कर दो और देख लो कि कैसे राहें खुलती हैं। कभी इस पे गौर कीजिएगा। तो क्या सीखा हमने इन सारी चीजों में अपने लिए, देख लीजिए कि राहत की बुनियाद, ये 20 चीजें हमने पढ़ी हैं, ये गोल्डन वर्ड्स बना लीजिए, इसके बुक मार्क्स बना के अपने अपने दोस्तों को दीजिए, ये लिखिए और लिख के नीचे कि हमने ये इस क्लास में सीखी थी बात। शायद आपका ये एक तोहफा उनको इस कोर्स की तरफ ले आए। आज कितने लोग दुखी हैं जिन तक कभी ये पैगाम नहीं गया। तो आपको अगर खुशी मिली तो आपने दूसरों को भी यही खुशी देने की कोशिश करनी है। तब देखिए कि अल्लाह पर ईमान और नेक अमल से बात शुरू होते होते अल्लाह के रज़ाक होने की बात, तकदीर पर ईमान, फिर लोगों की बजाय अल्लाह से उम्मीदें, सादा तर्ज जिंदगी है, लोगों से हुस्ने सलूक है, और इस तरह की इतनी खूबसूरत चीजें हमने पढ़ ली। कैसे जिंदगी में गम ठहर सकता है? हमारी कुछ आदात ही ऐसी होती हैं कि हम दुखी और गमजदा रहें। और सूरत बयीना की आयत नंबर 7 से 8 में तो अल्लाह ने पहले ही कह दिया था कि इन्नल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहाती उलाइकहुम खैरुल बरिया, जज़ाउहुम इंदा रब्बिहिम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फीहा अबदा रदियल्लाहु अन्हुम व रदुअन ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा। तो ये है असल बात कि अल्लाह उनसे खुश तो वो अल्लाह से खुश। अपनी जिंदगी में ये खुशी लाइए, जितना ज्यादा आप अल्लाह से राजी होंगे अल्लाह आपसे उतना राजी होगा। किसी ने कहा पता नहीं अल्लाह मुझसे कितना को खुश है, कहा भी बता देता हूँ। कहा कैसे पता लगेगा? कहा ये बताओ कि तुम अल्लाह से कितने खुश हो, बस उतना ही अल्लाह तुमसे खुश है। तो इन सारी बातों में हमने क्या सीखा, अपने आप से सवाल कीजिए। चंद चीजें जो सीखी, पहली बात है कि अल्लाह की खुशनुदी और जन्नत के हसूल के लिए नेकियों में भाग दौड़ करनी है, बोलिए इंशाल्लाह। फिर असल खुश नसीबी अल्लाह की मोहब्बत को पा लेना, सिर्फ दीन पर अमल करके जिंदगी आसान बनानी है, बिदात और खुराफात से बचना। इस्लाम दीन फितरत और इस पर अमल आसान है। कोई ना कहे कि दीन बहुत मुश्किल है, दीन बहुत आसान है। हम इस दीन को खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट करें। आप देखिए, मैं एक दो तीन मिसालें ऐसी दिमाग में अल्लाह ने दी। खानों में रोटी अपनी असल के एतबार से नरम होती है ना, लेकिन आप उसको ज्यादा ही पका दें, चूल्हे पे तवे पे पड़ी या ठंडे तवे पे रोटी डाल दें, तो रोटी अकड़ जाती है, सूख जाती है, और झाड़ते जाएं और झाड़ते जाएं और पतली हो जाएगी, सूख जाएगी। आपका कसूर है कि आपने चूल्हा तेज रखा, आपका कसूर है आपने रोटी को झाड़ा, आपका कसूर है कि आपने पका के रोटी खुली छोड़ दी। इसी तरह याद रखिए, दीन बड़ा प्यारा है, नरम। पिज्जा देख लीजिए, पराठा देख ले, पकाते ही जल्दी से उसको लपेट दें, वो शाम तक भी नरम रहेगा। हम अपने दीन का वो रंग लोगों को दिखाते हैं जो हमारी अपनी गलतियों की वजह से सख्त हुआ होता है। आप केक बनाते हैं, बड़ा सॉफ्ट है, उसी केक को आप आधे घंटे की बजाय 2 घंटे ओवन में छोड़ दें तो केक रस बन जाएंगे। तो दीन आपकी मेरी वजह से सख्त ना हो, हम कसूरवार हैं। याद रखिए, अगर हमारी किसी कमी बेशी या किसी रेशियो और प्रोपोर्शन को गलत करने की वजह से दीन से कोई हटा तो जिम्मेदार हम खुद होंगे। अल्लाह ताला हमारी इस्लाह फरमाए। और ये बड़ा नाजुक मरहला है, जब स्पेशली आप दीन के दाई बन जाते हैं ना, जब आप लोगों की जिम्मेदारी जहन पे लेते हैं कि चले मैं इनको सिखाती हूँ, मैं समझाती हूँ, तो ये और मुश्किल है। ना मेरी ढीलपन से कोई और ही ढीला हो जाए और ना मेरी सख्ती से कोई दीन से भी दूर हो। और मैं देखती हूँ कि सबसे मुश्किल ही बैलेंस टीचर रहना है, हर लिहाज से बैलेंस रखना अपने आप को। बाज दफा आपकी क्लास इतनी मुश्किल हो सकती है क्योंकि आप इतनी मुश्क टर्म्स बोल रहे हैं, आपके इल्म का रोब पड़ रहा है अगले पे और अगला परेशान है, या फिर आपकी क्लास इतनी बेतकल्लुफ है कि पता ही नहीं चल रहा कि पढ़ाने वाला कौन है और पढ़ने वाले कौन है। तो इन सब के बीच में एक खूबसूरत डिस्टेंस प्लीज के साथ दीन को लेकर चले, आप देखिए इस दीन से खूबसूरत चीज कोई नहीं है।